जैसा कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में परस्पर वार्तालाप करते हैं, हम पक्षियों की चहचहाट, वाहनों का शोरगुल या बिल्ली की म्याऊं म्याऊं आदि सुनते हैं। हमारे चारों ओर तरह तरह के विविध स्वरों की विभिन्न प्रबलताओं की ध्वनियां हैं। वास्तव में प्रायः हम किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी आवाज से ही पहचान लेते हैं। हम कई तरीकों से संवाद करते हैं, यहां तक कि एक शिशु भी बगैर शब्दों के सिर्फ ध्वनियों के माध्यम से संवाद करता है। वयस्क बोलकर या लिखकर परस्पर संवाद करते हैं। अक्सर यह हमारी आवाज ही है जिसके द्वारा हम ज्यादातर सीधे या फोन पर बातचीत कर पाते हैं। यहां तक कि अनपढ़ व्यक्ति भी बात कर सकते हैं। वैसे तो संवाद करने में सबसे ज्यादा उपयोग सीधे वार्तालाप का होता है, पर प्रौद्योगिकी ने हमें कई अन्य नए तरीके जैसे फोन यानी दूरभाष, रेडियो, टेलीविजन, भाषा संदेश जैसे कि पेजिंग एवं SMS जो आजकल बहुत प्रचलित है और इंटरनेट भी उपलब्ध कराए हैं। सीधी बातचीत तथा फोन व उपग्रहों द्वारा बातचीत में ध्वनि को पहुंचाने वाली तरंगें अलग अलग होती हैं। दोनों में ही तरंगों का इस्तेमाल होता है, परंतु हम बोलते समय ध्वनि तरंगों जो कि यांत्रिक तरंगें होती हैं व रेडियो व दूरभाष यानी टेलीफोन द्वारा ध्वनि भेजते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम लेते हैं। तो शिक्षार्थियों, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में श्री शेर सिंह सर हैं। तो शिक्षार्थियों, आज जो हम ध्वनि और संचार यानी साउंड एंड कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, उसको आप सुनने के पश्चात कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट हो जाएंगे, आप जान सकेंगे, क्लियर कर सकेंगे अपने डाउट्स को कि वो बिंदु कौन हो सकते हैं, जैसे कि तरंगों के गुणधर्म व प्रकृति का वर्णन कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसको हम लोग सुनेंगे चर्चा के दौरान। अलग अलग तरंगों जैसे यांत्रिक यानी ध्वनि और विद्युत तरंगों में अंतर कैसे करना होता है, कैसे दोनों तरंगें अलग अलग विभेद की जा सकती है आसानी से, इस चर्चा के दौरान हम उसकी भी जिक्र करेंगे। विभिन्न संचार युक्तियों जैसे सोनार एवं रडार में विभिन्न तरंगों के उपयोग को समझ सकेंगे, संचार के महत्व और आवश्यकता का वर्णन भी सुन सकेंगे, अलग अलग तरह की संचार प्रणालियों को पहचान सकेंगे तथा उनकी अच्छाई बुराई भी जान सकेंगे, और संचार में कंप्यूटरों व उपग्रहों के उपयोग पर भी हम चर्चा करेंगे इस पाठ में। तो आइए हम लोग जानना चाहते हैं अपने विशेषज्ञ से कि सर, ध्वनि और संचार को हमें थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम ध्वनि और संचार को अपने छात्रों तक बिल्कुल मौलिक चीजों से जुड़े हैं, उस पर हम शुरुआत करना चाहेंगे।
थैंक यू डॉक्टर आलोक। हम अपने लर्नर्स को सबसे पहले ध्वनि के बारे में बात करेंगे, साउंड के बारे में बात करेंगे। एंड साउंड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए वेव, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ए वेव, वेव इज ए पीरियोडिक डिस्टरबेंस कैरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट साउंड इज साउंड नीड्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, एंड साउंड मे हैव इट्स स्पीड इन डिफरेंट मीडियम डिफरेंट, एंड दिस स्पीड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। लर्नर्स विल लर्न अबाउट इट इन मोर डिटेल इन सीनियर क्लासेस, बट लर्नर मस्ट नो दैट साउंड हैज वेलोसिटी इन स्टील अबाउट 5200 मीटर पर सेकेंड, वाटर 1520 मीटर पर सेकेंड, एंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड, इन ग्लास 4540 मीटर पर सेकेंड, इन सिल्वर 3650 मीटर पर सेकेंड। वही वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड इन डिफरेंट मीडियम बिकॉज फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन वी आर गोइंग टू यूज द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम।
क्योंकि सर हमें लगता है कि साउंड वेव चूंकि हमारी यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है, इसलिए मीडियम की आवश्यकता तो बिल्कुल ही पड़ेगी। हाँ,
अब एक मोटा सा डिफरेंस हम देखें वेव्स के अंदर। वी डिवाइड वेव्स इन टू कैटेगरीज, वन इज मैकेनिकल वेव एंड वन इज नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडिया फॉर इट्स प्रोपेगेशन, साउंड वेव नीड्स मीडिया फॉर इट्स प्रोपेगेशन, एंड साउंड वेव्स हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ए वेव, दे हैव एम्पलीट्यूड दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन ऑफ वाइब्रेशन, and they have frequency, that is number of oscillations per second, and they have time period, time taken to complete one oscillation, and wavelength. Wavelength is the smallest distance between two crust or two trough. And we have very beautiful relation between all these physical characteristics. But here, important point is what type of propagation sound has in a medium. Sound is a longitudinal wave, means the vibrations of the medium are along the direction of wave propagation. Medium vibrations are back and forth about certain mean positions. So, there is a difference in pressure, and at some points there is the concentration of the medium particles, and that region is known as compression, and there is a reduce in pressure in some region, that is known as rarefaction. So, longitudinal waves travel in the form of compression and rarefaction, while the other type of waves, that is transverse wave, they have vibration perpendicular to the direction of wave propagation. And one important point is, if you want to produce a sound, what you need is to produce vibrations or oscillations. Without vibrations, you cannot produce a sound. Just you strike something on a membrane of tabla, then membrane start vibrating and you are able to listen the sound. Similarly, you can take any container, steel container, hollow, and just you strike by a spoon, then this container itself start vibrating and you have a pleasant sound. So, vibrations are more essential to produce a sound. Without vibrations, we cannot produce sound. Now, let us try to relate some physical characteristics to each other. If I say a sound wave travels a distance in its time period equal to lambda, here lambda is wavelength, then distance divided by speed of the sound, that is lambda upon v, will give you the time period. Because lambda we have taken the distance of one oscillation, so this is the time of one oscillation and we call it as time period. So time period is lambda upon v, or you can say v is equal to lambda upon t. If you write 1 upon t, that is 1 upon time period, as frequency, then the relation will be velocity is equal to frequency into wavelength, or you can say v is equal to n lambda. Similarly, there is a beautiful relation between frequency and time period. Suppose in t second, t means the time period, number of oscillations will be 1, and number of oscillation in 1 second will automatically equal to 1 upon t. So, this number of oscillations per second is known as frequency. That's why frequency is reciprocal of time period. The unit of the frequency is hertz, or cycle per second, or vibrations per second. And unit of the time period will be same as the time, that is second. And unit of the wavelength will be same as the unit of distance, that is meter. So, while you are writing any calculation, you have to keep in mind the proper use of units. Now, let us talk little more about the nature of the sound waves. As Dr. Gupta already introduced that sometimes we can recognize a person by hearing his sound. It's very difficult, but it happens. How does it happens? वी कैन से दैट देयर आर थ्री मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. वन इज लाउडनेस. लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड. इफ मोर एम्पलीट्यूड इज देयर, साउंड विल बी मोर लाउडर. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज पिच. यू कैन डिस्टिंग्विश टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस विद द हेल्प ऑफ पिच. पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. पिच मीन्स थ्रिलनेस ऑफ द साउंड. सो इफ फ्रीक्वेंसी इज हायर, पिच विल बी हायर एंड साउंड विल बी मोर थ्रिलर. यू कैन सी सर्टेन एग्जाम्पल्स. द साउंड ऑफ द मॉस्क्यूटो हैज वेरी हाई पिच एज कंपेयर टू द साउंड ऑफ द डंकी और साउंड ऑफ द लायन. सो थर्ड एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्टिंग्विश द साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच ओनली बाई क्वालिटी और टिम्बर. इट डिपेंड्स अपॉन हार्मोनिक्स. और यू कैन से इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टाइल बाई विच अ पर्सन स्पीक्स, हाउ द वोकल कॉर्ड ऑफ द पर्सन वाइब्रेट ऑसिलेट. सो यू कैन डिस्टिंग्विश दीज साउंड्स by these three characteristics, and you can perform here a very simple activity. Take three stretch strings of different lengths and try to oscillate them. Right from the mid of the strings, you pluck them, you will found that in spite of having same speed, because material is same, the pitch of the sound will be different. Means the number of vibrations or number of oscillations will be different. Secondly, one more simple activity you can do if you want to have the feeling of sound, that sound is everywhere, but we are not able to listen or we are not able to notice every type of sound. So if you are sitting in your house, you take a tumbler, put at your ear, you will have a sound which is present in the surroundings. Now you can detect it. So that tumbler is used as detector. And now if frequency of the sound is very low or very high, our ears or human ears will not be able to notice it. And that limit is known as audible limit. And it ranges from 20 hertz to 20,000 hertz. And the sound less than 5 hertz and less than 20 hertz is known as infrasonic, and more than 20,000 hertz is known as supersonic. And there are certain animals which can sense the sound which is infrasonic or ultrasonic. For example, elephant. Ears of the elephant are more sensitive for 5 hertz frequency. That is a less than the audible range of the human. And you can see a very beautiful example how the animals can fly in night, because they are not able to see the obstacles in their way. So these animals are able to sense the sound of frequency more than 20,000 hertz. They produce this sound. This sound comes back after the reflection of the obstacle in their way. They sense it and they change their path. There are number of birds which can sense this type of sound.
Like bats or chamgadad.
Bats. Bats is the very simplest example. And now we should talk certain important things about the sound, that is the level of intensity of sound. Level of intensity of sound is measured in terms of decibel. Deci means 1/10 and bell means level of sound. And bell is the name given in honor to the scientist Alexander Bell, who invented telephone. So it becomes a decibel. So if you are taking one reference level of sound and another level of sound having the difference of 10 decimal, and that you can write equal to n, so a beautiful expression you can write n is equal to 10 log at the base of 10 p2 over p1, where p1 is the reference level of the sound and p2 is that level of the sound which is used to measure. And here, just to have an idea, the intensity level of the sound of 30 decibel is just like a normal conversation at a very very low level.
जैसे फुसफुसाहट वगैरह करते
हैं. Like whisper like.
Whisper like.
And if you go beyond it, about 50 or 65. More than that, 65 you can take. 85 is little difficult. If you are listening 85 decibel sound continuously for longer hours, then there may be some damage. And if you are taking the sound level of aircrafts, that is about 130 decibel. So this is a logarithm scale. This is not linear relationship. But there is a government limit that in all the residential area, the sound level limit should be 35 decibel. So, in the surrounding of hospitals, in the surrounding of schools, and in residential area, passing of vehicles, beating of drums, playing music at a very high level is are not allowed.
So, इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं अपने छात्रों को कि ये इसके लिए मॉनिटरिंग कैसे करते हैं हम लोग. तो मनुष्यों के स्वास्थ्य पर ध्वनि के प्रभावों को जानने के लिए जरूरी हो जाता है कि किसी ऐसे यंत्र का विकास किया जाए जिससे ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सके. डेसिबल मीटर को एक विशेष क्रिस्टल जिसे हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहते हैं उसकी मदद से बनाया जाता है. और इसका गुण यह है कि जब इसे दबाव यानी जैसे कि वायु दाब की स्थिति में रखा जाता है तो यह विद्युत विभव पैदा करता है. डेसिबल मीटर में माइक्रोफोन और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टलों को काम में लिया जाता है. ध्वनि के कारण डायफ्राम में कंपन होकर यह क्रिस्टल को दबाता है जिससे विद्युत विभव पैदा होता है और जिसका माप हमें ध्वनि के स्तर को बता देता है. इस विभव को हम लोग अंशांकन करके उपयोग करके डिजिटल रूप में दर्शाते हैं ताकि पटाखों वाहनों और मशीनों को शोर को माप कर उनका मॉनिटरिंग किया जा सके और लोगों को एक विशेष स्तर से अधिक के शोर का सामना करने से बचाया जा सके. तथ्य यह है कि अत्यंत प्रबल संगीत भी लंबे समय तक सुना जाए तो हम बाधित हो सकते हैं. तो इसलिए सर जैसा कि आपने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ने जो है एक लिमिट बना रखा है 35 डेसिबल का, उससे अधिक हमें ध्वनि नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए अदरवाइज हमारे जो सराउंडिंग में और भी हमारे नेबर्स रह रहे हैं उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है.
ये लिमिट रेजिडेंशियल एरियाज के लिए है
जी.
बाकी फैक्ट्री है या दूसरे तरह के जो जगह है वहां पर ये लिमिट वेरी करती है. अब
नॉर्मली हम लोग सामान्य वार्तालाप में 65 डेसिबल के आसपास
बिल्कुल बिल्कुल
इस्तेमाल.
हमारे लर्नर्स ने एक बड़ा ही अच्छा सा शब्द सुना होगा जिसे हम कहते हैं ढोल. और जितनी बड़ी पोल उतना बड़ा ढोल. इसका बड़ा ही सीधा मतलब है कि जिस समय हम ढोल को पीटते हैं या ढोलक को पीटते हैं तो उसके अंदर की जो हवा है वो वाइब्रेट करती है और उन वाइब्रेशंस का जितनी ज्यादा पोल होगी उतना ही उन वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और उस एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से उसकी लाउडनेस भी ज्यादा होगी. हमारे लर्नर्स बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से फेमिलियर होंगे जैसे ढोलक है, बैंड है, तबला है, सारंगी है, हारमोनियम है,
गिटार है,
इन सब में दो तरह की चीजें होती हैं जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है. या तो मेम्ब्रेन जिसके पीटने से अंदर की वायु वाइब्रेट होती है या स्ट्रेच स्ट्रिंग. स्ट्रेच स्ट्रिंग का तनाव बढ़ा करके भी हम पिच बदल सकते हैं और उसकी लंबाई बढ़ा करके भी हम पिच बदल सकते हैं. हमारे लर्नर्स ने देखा होगा कभी जब म्यूजिशियन इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं तो उससे पहले वो उसको ट्यून करते हैं. तो अगर आप गिटार को ही देखें तो उसके ऊपर कुछ राउंड राउंड हुक लगे हुए होते हैं,
स्क्रू टाइप का होता है, इसको लोग टाइट करते हैं, ढीला करते हैं,
ढीला करके टाइट करके एक बाजे तनाव उस स्ट्रिंग के अंदर लाते हैं, जिससे कि उनको वो साउंड मिल जाए जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ में मैच करे। और इस मैचिंग को हम रेजोनेंस भी कहते हैं, और रेजोनेंस होने से एम्पलीट्यूड बहुत हायर हो जाता है, लाउडनेस हो जाती है, और इसको हम आजकल मेडिकल थेरेपी में भी यूज करते हैं इस सिस्टम को, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक पर्टिकुलर लिक्विड का सीक्रेशन होता है बॉडी में जो हमें कंफर्टेबल करता है। हमारे लर्नर्स ये जानते होंगे कि हमारी भाषा के अंदर स्वर और व्यंजन दो प्रकार के विधाएं हैं। स्वर बिल्कुल म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। जब आपको कभी चोट लगती है तो आपके मुंह से अचानक आवाज लगती है, आह, व्यंजन नहीं निकलेगा, का चा छा ये नहीं निकलेंगे। तो स्वर के निकलने से हमारा जो स्वर तंत्र है बॉडी का, उसमें एक ऐसे लिक्विड का सीक्रेशन होता है जिसमें एस्प्रिन टाइप एक मेडिसिन है जो हमें राहत दिलाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब किसी भी कारण से लोग रोते हैं तो रोने के बाद वो अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। तो जब वो रोते हैं तो रोते वक्त भी स्वर में रोते हैं, व्यंजन में नहीं, ऐसे करके रोते हैं। तो ये जो स्वर हैं जिनसे हम ध्वनि का संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही नहीं, अपने शरीर के एक तंत्र से दूसरे तंत्र में भी करते हैं। तो हम अभी इस ध्वनि के कुछ संचार संबंधी गुणों का भी वर्णन करना चाहेंगे, और हमारे भी ध्वनि के बारे में जो भी कुछ इम्पोर्टेंट इम्तिहान के लिए है वो लर्नर्स ध्यान में रखेंगे। एक तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स, एक इनके छोटे छोटे रिलेशंस और इनके छोटे छोटे एप्लीकेशंस। हम ये कहते हैं कि वेव का या साउंड वेव का एक डायग्राम बनाए। तो हमारे लर्नर्स हमारी किताब को देखें, मॉड्यूल 4 में
लेसन 18
में एक वेव फॉर्म डायग्राम बना हुआ है पेज नंबर 421 पर,
इंग्लिश वर्जन की बुक में,
जहां पर दो पॉइंट्स दिखाए हुए हैं जिन्हें हम क्रस्ट कहेंगे, और यू कैन से द सक्सेसिव क्रस्ट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। ऐसे ही इसमें एम्पलीट्यूड दिखाया गया है। अगर मैं ओरिजिन से लेकर के पहले क्रस्ट तक एक मार्क लगा लूं तो क्या हमारे लर्नर्स ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि ओरिजिन से लेकर के पहले क्रस्ट के मार्क तक वेव को चलने में कितना टाइम लगेगा अगर उसकी वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड है तो। और ये जो 330 मीटर पर सेकंड है, इट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमारे लर्नर्स ये भी जान लें कि ध्वनि की जो स्पीड है वो टेम्परेचर के साथ भी बदल जाती है। तो अगर आप इस वेव को देखें तो ओरिजिन से लेकर के जब वेव चलती है पहले क्रस्ट को पार करती हुई, फिर ओरिजिन पे आती है और फिर ट्रफ की तरफ बढ़ती है, और ट्रफ को पार करते हुए फिर ओरिजिन पे आती है। इन दो ओरिजिन के बीच में जितना डिस्टेंस है वो वेवलेंथ के बराबर है। अर्थात ओरिजिन से लेकर के पहले क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ का 1/4 है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आई वो 1/4 ऑफ द वेवलेंथ हो गई, और स्पीड हमारे पास 330 मीटर पर सेकंड है। अगर हम इस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे लर्नर्स इस तरह की कैलकुलेशंस का भी ध्यान रखेंगे अगर उनको परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। अब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं।
सर, कम्युनिकेशन से पहले अपने छात्रों को एक छोटी सी एक जानकारी दे दें।
हाँ बिल्कुल।
अभी कुछ देर पहले आपने वाद्य यंत्रों के बारे में बताया कि तबले, ढोल, बांसुरी, तुरही, ढोलक, इस तरह की चीजें चर्चा कर रहे थे।
बिल्कुल।
एक छोटी सी जानकारी दें कि बांसुरी जो है वो सबसे पुराना वाद्य यंत्र माना जाता है। उल्म जो कि एक दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में एक जगह है, वहां पे सन 2008 में गिद्ध के पंख की हड्डियों से बनी बांसुरी मिली थी। इसमें केवल 5 छेद थे, जबकि आधुनिक बांसुरी में 6 या इससे अधिक छेद मिलते हैं। और इस बांसुरी को लगभग 35,000 वर्ष पुराना माना जाता है। एक छोटी सी जानकारी थी जो अपने छात्र को हम शेयर करना चाहते थे। तो अब हम लोग सर चर्चा करें कम्युनिकेशन यानी संचार के बारे में।
हाँ, लेकिन आपके इस एग्जाम्पल से एक बात लर्नर्स को और हम पहुंचाना चाहेंगे।
जी बिल्कुल।
कि जो 5 छेद की बात है, बांसुरी में इन छेदों का क्या महत्व है? जब हम बांसुरी प्ले करते हैं तो अपनी उंगलियों से कभी किसी छेद को बंद करते हैं, कभी किसी छेद को ओपन करते हैं। तो जहां तक छेद ओपन है वहां तक एयर कॉलम की लेंथ है जो वाइब्रेट कर रही है, और हम छेद को बंद करके एयर कॉलम की लेंथ को बढ़ा देते हैं, और छेद को अगर ओपन कर दें तो एयर कॉलम की लेंथ कम हो जाती है, और एयर कॉलम की लेंथ बढ़ने से और घटने से उसका पिच बदलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, मतलब उसकी आवृत्ति बदलती है, और जब आवृत्ति बदलेगी तो म्यूजिक के अंदर एक अप्स एंड डाउन्स आएंगे,
अलग तरह की ध्वनियां सुनाई देंगी,
अलग अलग तरह की ध्वनियां सुनाई देंगी बढ़ते हुए स्वर में या घटते हुए स्वर में, जिसका म्यूजिशियन बहुत फायदा उठाते हैं और जो सुनने वाले हैं वो भी भाव विभोर हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। और सीवी रमन ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर काम किया, बहुत सारे इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट्स में बदला, तो उस तरह से भी हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को जान सकते हैं। अब हम संचार की बात करें। एक बहुत ध्वनि द्वारा हम संचार के केस में दोनों तरह की बात करेंगे, मैकेनिकल वेव्स की भी और नॉन मैकेनिकल वेव्स की, क्योंकि आजकल संचार में, कम्युनिकेशन में नॉन मैकेनिकल वेव्स बहुत ज्यादा यूज होती है। लेकिन चलिए पहले हम मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं, अर्थात हम साउंड वेव की बात करते हैं। हमारे जो लर्नर्स हैं वो अपने बुजुर्गों से ये पूछ सकते हैं, या अभी भी कभी कहीं ग्रामीण अंचल में ये बात हो सकती है कि अगर पूरे गांव के अंदर कोई संदेश पहुंचाना हो, कोई बात कम्युनिकेट करनी हो, तो एक मुनादी हुआ करती थी। एक आदमी होता था जो ढोलक को पीटते हुए या ड्रम को पीटते हुए लोगों को संदेश दिया करता था। सो दिस वॉज ए वेरी सिंपलेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग दी थी। अगर हमारे लर्नर्स थोड़े से अपने बुजुर्गों से ही बात करें, क्योंकि आजकल काफी चीजें बदल गई हैं। जब बैलगाड़ी चलाते थे लोग, तो बैलगाड़ी चलाने वाला एक खास आवाज में अपने बैलों को संदेश देता था, और वो बैल उस संदेश को फॉलो करते थे और अपने रास्ते पे चलते थे। तो कितना ज्यादा यूज था साउंड कम्युनिकेशन का। और साउंड कम्युनिकेशन में आप ये देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स भी एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की साउंड यूज करती हैं। जब मेल फीमेल को बुलाता है तो वो एक नई साउंड यूज करता है, एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही एनिमल्स में होता है, ऐसे ही जितने तरह के प्राणी पानी में रहते हैं, एक्वेटिक जो भी एक्वेटिक स्पीसीज हैं, उनमें भी साउंड कम्युनिकेशन होता है, और बहुत ही स्ट्रांग साउंड कम्युनिकेशन है उनका, क्योंकि वाटर के अंदर ये सबसे सशक्त माध्यम है कम्युनिकेट करने का, तो वो साउंड से ही कम्युनिकेट करते हैं। और इस साउंड कम्युनिकेशन के लिए एक टेक्नोलॉजी भी डेवलप की गई जिसका नाम है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार में क्या करते हैं, सोनार से हम पता लगाते हैं कि किसी समुद्र के अंदर या गहरे पानी के अंदर कोई चीज अगर छुपी हुई है तो वो कितनी गहराई पर है। इसके लिए हम पनडुब्बियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक साउंड इंस्ट्रूमेंट से साउंड को पानी के अंदर भेजते हैं। ये साउंड जो नीचे गहराई में छुपी हुई कोई वस्तु है, हो सकता है दुश्मन का जहाज ही हो, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है और इसे सेंस कर लेते हैं। अगर जाने का डिस्टेंस डी है और आने का डिस्टेंस भी डी है और टोटल टाइम जिसे हम बाहर से मेजर करते हैं अगर मानो वो टी सेकंड है, तो ये 2D डिस्टेंस कवर करने में उसे टी सेकंड टाइम लगा। और अगर हम साउंड की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें टाइम को, तो वो 2D के इक्वल हो जाएगा, अर्थात एक तरफ का डिस्टेंस डी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हम समुद्र के अंदर या किसी बहुत ही गहरे पानी के अंदर उस ऑब्स्टिकल का, उस चीज का पता लगा सकते हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उसकी गहराई बहुत ज्यादा है।
सोनार भेजकर हम जैसे दुश्मन की पनडुब्बियों को कितनी दूरी पे हैं पता लगा सकते हैं।
पता लगा सकते हैं और उनके लिए कोई प्लानिंग भी कर सकते हैं
जी।
जैसे बात कर रहे थे हम 1520 मीटर पर सेकेंड वाटर के अंदर इसकी स्पीड है, लेकिन अगर आप सी वाटर की बात करेंगे तो सी वाटर में डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होने से उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन वो कैलकुलेट की जाती है। तो सोनार का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है हम चीजों को खोजने के लिए भी, और दुश्मन के बहुत सारे इस तरह के प्लानिंग से बचने के लिए भी। और आजकल पिछले दिनों में काफी खबरें रही थी कि समुद्री लुटेरे या समुद्री जहाज इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे हैं, तो यहां पर सोनार एक कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ही साउंड वेव की तरह हम एक और दूसरी चीजों की बात कर सकते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में खास बात यह है कि उसको मीडियम की जरूरत नहीं है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम की जरूरत नहीं है और वाइब्रेशंस किस प्रकार के होते हैं ये भी हम देख लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर भी होते हैं, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट, दैट इज 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। अगर मेडिकल साइंसेज में जाएं तो वहां पर गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं। अगर आप फूड प्रोसेसिंग में जाएं या वाटर प्योरिफिकेशन में जाएं तो वहां पर अल्ट्रावायलेट रेज हैं। बाकी विजिबल स्पेक्ट्रम है जहां पर हम अपने दिनचर्या शुरू करते हैं और खत्म करते हैं। इसके बाद कुछ हीट वेव्स हैं जिन्हें हम इंफ्रारेड वेव करते हैं। फिर माइक्रोवेव ओवन में और रडार में यूज होने वाली वेव्स हैं जिन्हें हम माइक्रोवेव्स कहते हैं। फिर रेडियो वेव्स हैं, टेलीविजन वेव्स हैं। अगर हम वेवलेंथ के, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में इन सभी वेवों को रखें, इन सभी तरंगों को रखें, तो जो एक पिक्चर बनेगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। तो हम सबसे पहले सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और कम वेवलेंथ वाली वेव को रखेंगे जो है गामा, उसके बाद एक्सरे। एक्सरे की जो रेंज है वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसका मतलब 1 एंगस्ट्रॉम से कम वेवलेंथ वाली जो वेव है वो गामा है। 100 एंगस्ट्रॉम से ऊपर अगर हम चलें, मतलब एक्सरे के बाद चलें, तो वो अल्ट्रावायलेट वेव है। अल्ट्रावायलेट के बाद में आता है विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसको जनरली हम 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में ले जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो अल्ट्रावायलेट वेव है वो 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम तक रही। अब विजिबल के बाद इंफ्रारेड। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम शुरू होता है विजिबल के बाद, और इंफ्रारेड के बाद शुरू हो जाता है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव की जो रेंज है वो है करीब 1 मीटर टू 100 मीटर। इसका मतलब अल्ट्रावायलेट की जो इंफ्रारेड की जो रेंज हुई, इंफ्रारेड की रेंज हो गई विजिबल के तुरंत बाद अर्थात 7000 एंगस्ट्रॉम टू 1 मीटर, और माइक्रोवेव के बाद हम जो बात करेंगे वो है रेडियो वेव्स और टेलीविजन वेव्स, अर्थात 100 मीटर से ज्यादा वेवलेंथ वाली वेव्स रेडियो वेव्स होंगी और टेलीविजन वेव्स होंगी। हमारे लर्नर्स एक एक यूज लगभग इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का समझ लें। जैसे गामा रेज है, गामा रेज मेडिकल थेरेपी में कैंसर जैसे बहुत ही भयानक बीमारी के लिए यूज की जाती है। एक्सरेज मेडिकल में डायग्नोज करने के लिए, एक्सरेज बॉडी में कहां क्या नुकसान हुआ है, कहीं हड्डी टूटी है, कैसे क्या है, तो वहां एक्सरे लेते हैं, हमारे लर्नर्स फेमिलियर होंगे एक्सरे से। इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, और अल्ट्रावायलेट रेज में भी हमारे लर्नर्स सुनते होंगे कभी कभी वाटर प्योरीफायर बेचने वाले लोग कहते हैं जी इसमें यूवी ट्यूब लगी हुई है या इसकी यूवी ट्यूब खराब हो गई, इसे बदल दो। तो वो यूवी ट्यूब क्या है, वो है अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस करने वाली एक इंस्ट्रूमेंट। तो वाटर प्योरिफिकेशन में हम अल्ट्रावायलेट रेज करते हैं और फूड प्रिजर्वेशन में भी हम अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल स्पेक्ट्रम, हमारी जो आंखें हैं वो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम में अर्थात विवग्योर वायलेट टू रेड कलर्स को ही देख पाती है। ये 7 कलर्स हैं जो सबसे पहले न्यूटन ने आइडेंटिफाई किए थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हमारी जो आंखें हैं, जो ह्यूमन की आंखें हैं, वो येलो ग्रीन कलर के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। जैसे साउंड के लिए ह्यूमन ईयर 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, ऐसे ही ग्रीन येलो लाइट के लिए हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव है। हमारे लर्नर्स ने देखा होगा कभी जब आंख का ऑपरेशन होता है तो एक ग्रीन कलर के कपड़े की लिड आंख के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि हमारी आंख को ज्यादा कष्ट नहीं होता ग्रीन येलो लाइट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता है वो इतना वर्सेटाइल है कि हमारे लर्नर्स देखेंगे और सुनेंगे जो हम बात उनसे अब तक पहुंचा रहे हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम्युनिकेशन है। मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरी आवाज मैकेनिकल वेव है, मेरे सामने माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन इस मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफायर होकर ट्रांसमीटर के माध्यम से एयर में चले जाते हैं, फिर वहां रिसीवर इसे रिसीव करता है और फिर उल्टा प्रोसेस होता है। वहां भी एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर दोबारा से मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो एक ऐसी डिवाइस जो किसी भी तरह की वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करे उसे हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। मतलब यहां जो माइक्रोफोन है वो ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है। अभी डॉक्टर गुप्ता ने एक पीजो क्रिस्टल का एग्जाम्पल दिया, वो भी एक ट्रांसड्यूसर बन गया। तो ऐसी डिवाइसेस को हम ट्रांसड्यूसर कहेंगे। और जो डिवाइस दूसरे सिरे पर इसका अपोजिट काम करती है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोंडर। तो कम्युनिकेशन के दोनों सिरों पर एक पर ट्रांसड्यूसर है और एक पर ट्रांसपोंडर है। और अगर ये टू वे कम्युनिकेशन है तो दोनों जगह ट्रांसड्यूसर और ट्रांसपोंडर लगेंगे, दोनों सिरों पर लगेंगे। एक बहुत छोटा सा कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हमारे लर्नर्स रडार की फॉर्म में देख सकते। रडार है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज, ये भी बिल्कुल ठीक सोनार की तरह है। सोनार को हम पानी में इस्तेमाल करते हैं, रडार को हम स्काई में इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बहुत ही तेजी से हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट, या दुश्मन का कोई फाइटर प्लेन जाता है और उसकी पोजीशन हमें पता करनी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम एक इंस्ट्रूमेंट से उसकी तरफ भेजते हैं और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस ऑब्स्टिकल से, उस फाइटर प्लेन से, उस एयरक्राफ्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। फिर जाने और आने में डिस्टेंस हो गई 2D, टाइम हमने नोट कर लिया और ये टाइम बहुत ही डिजिटलाइज डिवाइस से कैलकुलेट होता है और वेलोसिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एयर और इन फ्री स्पेस इज कॉन्स्टेंट, दैट इज 3×10⁻¹⁸ ms. सो द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्स्टिकल बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइडेड बाई 2। तो रडार का इस्तेमाल आप बहुत देख चुके होंगे कि इस तरह से टेक्निकल कम्युनिकेशन में रडार का काफी यूज होता है।
यानी सर, इन दोनों डिवाइसों में हम लोग इको करते हैं, साउंड का बैक इको बैक लेते हैं ना?
यस,
प्रतिध्वनि को इसी को रिसीव करते हैं और टाइम और डिस्टेंस पता है तो निकाल लेते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, और सिंपल सा रिलेशन है, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा बात नहीं है।
रडार तरह की सर हम एक प्रतिध्वनि के बारे में एक छोटी सी जानकारी छात्रों को।
वेलकम वेलकम
छात्रों, क्या आपने कभी किसी घाटी में अपने चीखने या ताली बजाने पर होने वाली प्रतिध्वनि सुनी है? यह प्रतिध्वनि पहाड़ियों में से आती है। यह आपकी आवाज या आपके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की परावर्तित ध्वनि होती है। एक बहुत बड़े हॉल, दो पर्याप्त दूरी पर स्थित दीवारों या इमारतों के बीच हम प्रतिध्वनि, यानी जिसे गूंज भी कहते हैं हम लोग, उसको सुन सकते हैं। जब परावर्तन बहुत दूर स्थित किसी वस्तु से होता है तो हम उसको प्रतिध्वनि के रूप में पहचान पाते हैं, मगर यदि परावर्तन किसी पास की वस्तु से हो तो हमारा मस्तिष्क उसे हमारी वास्तविक आवाज ही समझता है। और यही कारण है कि अधिकतर लोग बाथरूम में अपनी आवाज सुनकर आनंदित होते हैं, इसे आजकल लोग बाथरूम सिंगर कहते हैं, अपने से गुनगुनाते रहते हैं, क्योंकि उनकी गूंज जल्दी वापस सुनाई देती है जो कि वास्तविक ध्वनि से जुड़ी ही प्रतीत होती है। हम दो ध्वनियों को अलग अलग कर पहचान कर सकते हैं यदि वह 0.1 सेकंड से अधिक समय अंतराल पर सुनी जा रही हो। नॉर्मली होता है क्या कि जो हमारे बाथरूम होते हैं आमतौर पर वो बहुत छोटे होते हैं और उनमें यह अंतर 0.1 सेकंड से कम होता है, इसलिए जो ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में आनी चाहिए वो हमें ओरिजिनली प्रतीत होने लगती है।
डॉक्टर गुप्ता, आपने बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताई, इसको हम थोड़ा सा और जोड़ते हैं। हम लोग जो सुनते हैं, हम दो तरह से सुनते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। आपने और हमारे लर्नर्स ने यह अनुभव किया होगा कि अगर आप अपनी रिकॉर्डेड आवाज को सुने तो आपको वो डिफरेंट लगेगी। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं जो सुन रहा हूं अपनी आवाज को, वो इंटरनली सुन रहा हूं, लेकिन दूसरे की आवाज को मैं एक्सटर्नली सुन रहा हूं। तो अगर आपकी रिकॉर्डेड कोई साउंड है, आप देखेंगे उसे, आपको लगेगा करे ये तो किसी और की आवाज है, फिर धीरे धीरे आप उसको पहचानना सीख जाएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो फैक्ट है वो रडार के बारे में मैं बताना चाह रहा था अपने लर्नर के साथ शेयर करूं। जब रडार शुरू में बना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल हुआ तो एक बड़ी सी चिड़िया उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रास्ते में आ गई और वो मर के नीचे गिर गई। जब उस चिड़िया को देखा गया तो ये पाया गया कि उसका गोश्त बहुत गर्म है। दिस वॉज द इवेंट विच हैज गिवन द बर्थ ऑफ माइक्रोवेव ओवन, क्योंकि रडार में इस्तेमाल होने वाली जो वेव्स है, जो माइक्रोवेव्स है, उसका हीटिंग इफेक्ट इतना हाई है। अब हमारे लर्नर्स एक चीज के लिए और भी यहां सेंसिटाइज हो सकते हैं, वो क्या है? अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस्तेमाल करेंगे और इस तरह की वेव्स की डेंसिटी अगर आपकी सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आप नेचर की बहुत सारी चीजों से अलग हो जाएंगे, उनका आनंद नहीं पाएंगे। जैसे स्पैरो, आजकल जो गौरैया चिड़िया होती थी बहुत कम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से वो या तो पलायन कर गई या मर गई। ऐसे ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जिन्हें खतरा है। तितली, अब आपने देखा होगा कभी किसी जगह जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बहुत ज्यादा जाल है, फूल भी खिले हुए हैं, बरसात अभी अभी हो चुकी है, मौसम बड़ा सुहावना है, लेकिन तितली का अभाव है, तितली नहीं आ रही। तो जब तक तितली फूल पर नहीं बैठती, तब तक फूल की अपनी महिमा शून्य होती है। तो इस तरह के जो आनंद हमें नेचर में मिलते हैं, इवन मधुमक्खियां, दे आर ऑल्सो सेंसिटिव फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनसे हमें नेचुरल शहद मिलता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ज्यादा डेंसिटी वाले एरिया में आप देखेंगे कि कहीं भी मधुमक्खियों का छत्ता नहीं मिलेगा, कहीं भी शहद का छत्ता नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रति काफी हमें सजग रहना चाहिए, और जहां तक हो हमें इनसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए अपने आप को। आजकल नई टेक्नोलॉजी में प्रोटेक्शन के बहुत सारे ऐसे मेथड्स आ गए हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। इवन जो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है, सेल फोन रियली एक बहुत ही वंडरफुल डिस्कवरी है, और अब आपको दुनिया इतनी छोटी लगने लगी है कि आप कहीं भी कभी भी कैसे भी बड़े आराम से बात कर सकते हैं। वो दूसरी बात है कि कभी कभी बड़ा इनकन्वीनियंस होता है, आपके घर से बड़ा ही इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है और आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, सामने दो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, अगर आपने मोबाइल फोन यूज किया तो वो आपका चालान काटने के लिए तैयार खड़े हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप किसी नेचुरल कॉल के लिए वॉशरूम गए हुए हैं, आपका टेलीफोन बज गया आपकी जेब में रखा हुआ, अब आप क्या करेंगे? तो कभी कभी आपके जो पल निजी होते हैं उनको सेल फोन बर्दाश्त नहीं कर पाता आपके उस सुख को, और वो बोल पड़ता है अचानक। तो ऐसे हमें अपने आप को मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अभी आप जो ये प्रोग्राम वेब रेडियो पर सुन रहे हैं, दिस इज थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन आजकल बहुत ही कॉमन है। एक वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पूरे एटमॉस्फेयर को पार करती हुई सैटेलाइट द्वारा रिसीव होती है, वहां से ट्रांसपोंडर उसे वापस भेजता है, और फिर वो रिसीवर में रिसीव होती है और फिर रिसीवर तक पहुंच पाती है। आजकल कई और भी कम्युनिकेशन है, फैक्स है, ईमेल है, और रेडियो भी अभी अपने काफी महत्वपूर्ण बना हुआ है संचार के लिए। तो इस तरह के जो माध्यम हैं, इस तरह के जो कम्युनिकेशन हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से होते हैं, वहां हम चाहेंगे कि हमारे लर्नर सेंसिटाइज हों और एक प्रोटेक्शन के साथ इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करें, क्योंकि इनके काफी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। टेलीविजन कम्युनिकेशन है, टेलीविजन में आप उसके बहुत नजदीक बैठ के ना देखें, ज्यादा वॉल्यूम करके ना सुने, और स्क्रीन से प्रोटेक्शन करें। जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, आजकल आपने देखा होगा कंप्यूटर इतना यूज हो रहा है, चैटिंग करते हैं लोग, और पहले जो ज्यादा एनर्जी वाली बात होती थी, हमारे रिश्तेदार हमारे लिए रिश्ते ढूंढते थे, आजकल ये सारा काम कंप्यूटर ने कर लिया है, और हम कंप्यूटर पर बैठे बैठे बहुत सारे ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, पहले इतने ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। तो अब वो कितना सक्सेसफुल है, कितना क्या है, बट दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम। तो हमें अपने आप को इन बहुत सारी चीजों के साथ मैनेज करना पड़ेगा, सेंसिटाइज होना पड़ेगा, और हमारे लर्नर्स इंसान के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज, करेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन पर ध्यान रखें।
सर, जैसा कि भी आपने बताया कि हमें जो संचार के लिए विभिन्न तरह की युक्तियां और प्रणालियां इस्तेमाल करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग क्या माइक्रोफोन या स्पीकर या टेलीफोन या संचार केस में उपग्रह, कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह हम लोग हैम का भी इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा हम चाहेंगे कि सर अपने छात्रों को हैम के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करें।
हैम रेडियो बोलते हैं हम इसे, और पहले इसका वर्जन हुआ करता था सिटी बैंड रेडियो। इसमें फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हायर नहीं होती है जितनी अल्ट्रा हाई टेलीविजन में होती है। और हम एक बात और बताना चाहेंगे अपने शेयर के साथ, अपने लर्नर्स के साथ शेयर करेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इंटरनेशनली अलॉट होती है। हर कम्युनिकेशन हर फ्रीक्वेंसी पर नहीं किया जाता। सम इज डोमेस्टिक फ्रीक्वेंसी, सम इज आर्मी पर्पज फ्रीक्वेंसी, सम इज साइंटिफिकल यूजेस, तो इन सब के लिए अलग अलग होती हैं। ऐसे ही सिटी बैंड रेडियो की एक अलग फ्रीक्वेंसी थी जिसका बाद में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ और हम उसको हैम रेडियो कहने लगे। लेकिन कम्युनिकेशन के आजकल इतने ज्यादा साधन हो गए हैं कि हैम रेडियो को लोग इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हैम रेडियो की एक बड़ी खास बात है, इसमें बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। इसमें हम जो भी बात कर रहे होते हैं हम उस लेसन को रेडियो पर भी हम ट्रांसमिट करते हैं, और उसके साथ साथ कभी कभी हम उसको वीडियो पर भी ट्रांसमिट करते हैं। तो वो दोनों चीजें देख सकते हैं। तो हैम रेडियो का भी अपने कम्युनिकेशन में यूज है, लेकिन दूसरे साधनों से ये थोड़ा सा डिफरेंट है।
बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी आपने चर्चा किया हैम रेडियो के बारे में, तो हम अपने छात्रों को कुछ उपग्रह यानी सैटेलाइट्स के बारे में बता दें कि हमारे भारतवर्ष ने भी बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया है। ग्रहों, ये सैटेलाइट एक्चुअली होते क्या है कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड, वही हमारे जो उपग्रह कहलाते हैं। सौरमंडल में इस तरह से बुध ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों को प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, परंतु हमारे पास कई देशों द्वारा छोड़े गए और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए कृत्रिम उपग्रह भी हैं। शायद कभी आपने सूर्यास्त के तुरंत बाद क्षितिज के पास कुछ सूक्ष्म प्रकाश के बिंदु जैसे आकाश के पास चक्कर लगाते देखे होंगे। ये इतनी तेज गति से गति करते हैं कि तारे नहीं हो सकते। ये कृत्रिम उपग्रह हैं जो सूर्य के क्षितिज के नीचे चले जाने के कारण उसके प्रकाश को विकिरणित करके चमकते हुए दिखाई देते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 तत्कालीन सोवियत संघ USSR द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। यह अपने साथ रेडियो ट्रांसमीटर लेकर गया था। इसी तरह अमेरिका के द्वारा भी 1958 में कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए छोड़ा गया, और यह पहला उपग्रह प्रोजेक्ट स्कोर था। और हमारे भारतवर्ष ने भी पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट USSR की प्रमोचन सुविधा का उपयोग करके 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा था। उसके बाद 17 जून 1979 को भास्कर 1 भी छोड़ा गया था जो हमारे भारतवर्ष का था। स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 का विकास कर लेने के बाद 18 जुलाई 1980 को 4 चरण वाले SLV-3 का उपयोग करके 35 kg का रोहिणी 1 उपग्रह प्रमोचित किया गया, और इसके बाद रोहिणी के क्रम में ही 2 और उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए। इसके बाद एप्पल और बहुत सारे से कई उपग्रह जैसे भास्कर 4 सेकेंड, इनसेट, ये सब हमारे भारतवर्ष द्वारा छोड़े गए हैं जो कि कृत्रिम उपग्रह हैं। तो शिक्षार्थियों, इस तरह से हमारे बहुत सारे,
डॉक्टर गुप्ता एक बात मैं और बता दूं कि हमारे जो सैटेलाइट होते हैं
जी,
जिनको हम मैन मेड सैटेलाइट कहते हैं, ये 2 तरह के हैं। एक सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है और एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है
जी।
तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उनका यूज हम कम्युनिकेशन में करते हैं, ये हमारे लर्नर जानेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और सैटेलाइट्स अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में घूमते हैं, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये सैटेलाइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था।
बहुत धन्यवाद सर। तो शिक्षार्थियों, आज हमने चर्चा किया था ध्वनि और संचार के बारे में यानी साउंड और कम्युनिकेशन। तो इस चर्चा के बाद आप बहुत सारे बिंदुओं पर स्पष्ट हो गए होंगे, जैसे कि ध्वनि कंपनों के कारण उत्पन्न होती है और संचरण के लिए इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम गैस जैसे वायु, ठोस अथवा द्रव हो सकता है। यह ठोसों में सबसे तेज और फिर द्रव में और गैसों में सबसे धीमी संचरित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग विकिरण तरंग रूप होते हैं और निर्वात में संचरण करते हैं। ध्वनि हो या विद्युत चुंबकीय तरंगों में आवर्त गति होती है, अर्थात ऐसी गति जिसकी निश्चित समय में पुनरावृत्ति होती है। और इसी तरह हम लोगों ने साउंड नेविगेशन रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग यानी सोनार रडार के बारे में चर्चा किया, बहुत सारे सैटेलाइट्स के बारे में बताया। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत सिग्नल परिवर्तित करता है जबकि स्पीकर पुनः इसे ध्वनि में परिवर्तित कर देता है। माइक्रोफोन कई तरह के हो सकते हैं जैसे संधारित्र यानी कैपेसिटर, पीजोइलेक्ट्रिक, संपर्क या चुंबकीय माइक्रोफोन। ध्वनि प्रदूषण के गंभीर दुष्प्रभाव हैं, इसलिए शोर को कम रखने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इसी तरह अधिक समय तक मोबाइल का उपयोग करके गंभीर बीमारियों और शारीरिक नुकसान का खतरा होता है, इसलिए शिक्षार्थियों इतना हो सके हमें साउंड कम से कम प्रोड्यूस करना चाहिए और कम से कम इसका इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।